इप्सिता सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, तभी अचानक पूरे हॉल में अंधेरा छा गया। इप्सिता अपनी मम्मी और नंदिनी के साथ सीढ़ियों पर ही रुक गई। पूरे हॉल में अंधेरा था, केवल एक फोकस लाइट इप्सिता पर पड़ रही थी। हॉल में मौजूद सभी की निगाहें इप्सिता पर टिक गई। फोकस लाइट पड़ते ही इप्सिता ने अपना हाथ चेहरे के सामने कर लिया। उसे इस फोकस लाइटिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये सबकी निगाहें सिर्फ खुद पर महसूस करके उसे थोड़ा अजीब लगा। वहां की डेकोरेशन और लाइटिंग बहुत अच्छे से सजाई गई थी। सारी लाइट इप्सिता पर केंद्रित थी और उसके खूबसूरत चेहरे पर पड़ते ही सभी उसकी खूबसूरती की चर्चा करने लगे। रानी सा मुस्कुराते हुए इप्सिता की तरफ देख रही थी। अर्पिता अपनी माँ के बगल में आकर खड़ी हुई और बोली, वैसे माँ, आपने तो बहुत अच्छी भाभी चुनी है अभिमन्यु भाई के लिए। बिल्कुल परफेक्ट लगेंगी ये हमारे भाई के साथ। इनकी जोड़ी खूब जंचेगी। माँ सा मुस्कुराकर सिर हिलाई। अभिमन्यु की नज़र इप्सिता पर पड़ते ही वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और उसने इप्सिता को पैरों से लेकर सिर तक देखा। वो उन्हीं कपड़ों में थी जो अभिमन्यु की माँ ने भेजे थे। उस पोशाक में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। एक पल के लिए अभिमन्यु इप्सिता की खूबसूरती में खो गया। सुहासिनी और नंदिनी इप्सिता को नीचे ले आईं। दोबारा से पूरे हॉल में लाइटें जल उठीं। मासा आगे बढ़ीं और उन्होंने इप्सिता के चेहरे को छुआ। उन्होंने 500 रुपए की एक गड्डी निकालकर उसे इप्सिता के सिर के ऊपर से घुमाते हुए पीछे खड़े मैनेजर के हाथ में दे दी। फिर उन्होंने इप्सिता की ठोड़ी पर हाथ रखकर उसका चेहरा थोड़ा ऊपर उठाते हुए कहा, बहुत खूबसूरत हैं आप इप्सिता, हमें अपनी पसंद पर गर्व है। हमने आपको राजवंशी राज परिवार की बहू चुनकर कोई गलती नहीं की है। नंदिनी इप्सिता के बगल में खड़ी की। मासा ने नंदिनी और सुहासिनी की ओर देखते हुए कहा, सुहासिनी जी, आज से आपकी बेटी हमारी अमानत हुई। अभिमन्यु, इधर आइए। मासा के मुंह से अपना नाम सुनते ही अभिमन्यु तुरंत स्टेज से नीचे उतरा और मासा के बगल में आकर खड़ा हो गया। इप्सिता अभी भी नजरें झुकाए खड़ी थी। उसने अभी तक अभिमन्यु को नहीं देखा था। मासा ने अभिमन्यु को आदेश दिया, इप्सिता का हाथ पकड़िए और उन्हें स्टेज पर ले जाइए। अभिमन्यु ने सिर हिलाकर इप्सिता के सामने अपना हाथ बढ़ाया। इप्सिता अभी भी नंदिनी का हाथ पकड़े हुए थी। नंदिनी ने धीरे से उसका हाथ छोड़ते हुए कहा, छोड़ो मेरा हाथ और आगे बढ़ो। इप्सिता के दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। सुहासिनी जी नंदिनी के साथ पीछे हट गईं। इप्सिता ने धीरे से अपना हाथ उठाकर अभिमन्यु के हाथ पर रखा। अभिमन्यु ने उसका हाथ पकड़ा और उसे स्टेज पर ले जाने लगा, लेकिन इप्सिता का लहंगा बहुत भारी था। तभी अर्पिता इप्सिता के बगल में आई और उसके लहंगे को संभालते हुए बोली, बहुत प्यारी लग रही हैं भाभी, आइए हम आपकी थोड़ी मदद कर देते हैं। इतना कहकर अर्पिता ने इप्सिता के लहंगे को पकड़ा और इप्सिता अभिमन्यु का हाथ पकड़कर स्टेज पर चढ़ गईं। जैसे ही इप्सिता स्टेज पर चढ़ी, उसकी नज़र अभिमन्यु के चेहरे पर गई। अभिमन्यु भी आज बहुत हैंडसम लग रहा था। जैसे ही उनकी नज़रें मिली, वे दोनों एक दूसरे में खो गए। अर्पिता ने उन्हें चिढ़ाते हुए कहा, हाँ हाँ, हम जानते हैं आप दोनों आज बहुत प्यारे लग रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ सबके सामने ही आप दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाएंगे। थोड़े दिन की ही तो बात है, कुछ दिनों बाद एक दूसरे के साथ ही रहना है, इसलिए अभी थोड़ा सब्र रखिए। इतना कहकर अर्पिता मुस्कुराई। इप्सिता ने तुरंत अपनी नजरें झुका ली और अभिमन्यु का हाथ छोड़ दिया। इप्सिता का हाथ छोड़ते देख अभिमन्यु को अच्छा नहीं लगा। उसने मन ही मन कहा, शायद इप्सिता अभी भी मुझसे नाराज है, इसीलिए वो मुझसे नजरें नहीं मिला रही हैं। क्या मैंने सच में उस दिन उन्हें ज्यादा परेशान कर दिया था? अभिमन्यु ये बातें सोच ही रहा था कि उसकी नजर इप्सिता के कंधे पर गई। वो थोड़ी असहज लग रही थी, लेकिन अभिमन्यु ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वे दोनों स्टेज पर ही खड़े थे कि मासा ने तेज आवाज में कहा, सुहासिनी जी, रिंग सेरेमनी शुरू करें। इप्सिता के माता पिता और उदयवीर इप्सिता के पीछे आकर खड़े हो गए। मासा और अर्पिता अभिमन्यु के बगल में खड़े थे। अभिमन्यु के चाचा इस सगाई से बिल्कुल खुश नहीं थे और ये बात उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी। मासा ने अभिमन्यु के हाथ में इप्सिता की अंगूठी पकड़ाई। अंगूठी बहुत खूबसूरत थी। बीच में लाल रंग का रूबी लगा था और उसके चारों तरफ हीरे इस तरह जड़े थे कि वो एक बहुत ही सुंदर लाल और सफेद फूल लग रही थी। इप्सिता के लिए अभिमन्यु की अंगूठी थोड़ी साधारण थी, लेकिन उसका लुक बहुत ही संयमी था। रानी सा ने इप्सिता की ओर देखते हुए कहा, बेटा, अपना हाथ आगे बढ़ाइए और अभिमन्यु को अंगूठी पहनाइए। इप्सिता ने नंदिनी की ओर देखा। नंदिनी ने उसे अभिमन्यु को अंगूठी पहनाने का इशारा किया। तभी सुहासिनी जी इप्सिता के कान में आकर बोली, इप्सिता बेटा, आप उधर क्यों देख रही हैं? आगे बढ़िए, कुंवर सा को अंगूठी पहनाइए। इप्सिता ने अपनी माँ की बात सुनते ही आगे बढ़ी और अभिमन्यु ने अपना हाथ आगे कर दिया। इप्सिता ने अभिमन्यु की तीसरी उंगली में अंगूठी पहना दी। सब लोग जोर से तालियां बजाने लगे। अभिमन्यु और इप्सिता पर गुलाब की पंखुड़ियां गिरने लगी। तभी इप्सिता को ऐसा लगा जैसे उसकी ब्लाउज का हुक उसे चुभ रहा है। वो इससे बहुत असहज हो रही थी। उसने मन ही मन कहा, ये क्या हो रहा है, ये हुक मुझे क्यों चुभ रहा है? मैंने नंदिनी से कहा था इसे ठीक से लगाओ, लेकिन इस लड़की ने मेरी बात ही नहीं सुनी। मासा ने अभिमन्यु को इप्सिता के हाथ में अंगूठी पहनाने का इशारा किया। अभिमन्यु ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। इप्सिता अपने ही ख्यालों में डूबी हुई थी। उसे अपने ब्लाउज की बहुत चिंता हो रही थी। तभी सुहासिनी जी ने इप्सिता का हाथ धीरे से आगे बढ़ाया। इप्सिता ने अपना हाथ अभिमन्यु के हाथ पर रखा। जैसे ही अभिमन्यु ने इप्सिता को अंगूठी पहनाई, इप्सिता ने कसकर अभिमन्यु का हाथ पकड़ लिया। सब लोग जोर से तालियां बजा रहे थे। अभिमन्यु हैरानी से इप्सिता की ओर देखने लगा और उसने मन ही मन कहा, राजकुमारी इप्सिता को क्या हुआ? उन्होंने मेरा हाथ इतनी कसकर क्यों पकड़ रखा है? इप्सिता के चेहरे पर एक अलग ही डर साफ दिख रहा था। इप्सिता ने मन ही मन कहा, ओ गॉड, मेरे ब्लाउज का हुक खुल गया है। अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बेइज्जती होगी और मम्मी तो मुझे पता नहीं क्या क्या बोलेंगी। इप्सिता के चेहरे पर घबराहट साफ थी। उसने अभिमन्यु के हाथ को कसकर दबा दिया। अभिमन्यु के हाथ में इप्सिता का नाखून गड़ गया, लेकिन अभिमन्यु ने जरा भी शिकन नहीं दिखाई। उसने उस दर्द को सह लिया। इप्सिता खड़े होने से डर रही थी। तभी अभिमन्यु ने उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं बैठाते हुए कहा, आर यू ऑल राइट? इप्सिता ने अभिमन्यु की बात सुनते ही कुछ नहीं कहा। वो बस अभिमन्यु की आंखों में देख रही थी। अभिमन्यु की नजरें इप्सिता की नजरों से टकराई और वो इप्सिता के चेहरे पर आए डर को समझ पा रहा था। वो चुपचाप इप्सिता के बगल में बैठकर धीमी आवाज में बोला, क्या बात है राजकुमारी, आप ठीक है ना? अभिमन्यु ने दोबारा पूछा, लेकिन इप्सिता कुछ नहीं बोली। क्रमशः